नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सब तैयार हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एस्तर नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ भी मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रभु ख्रीस्त मेरे स्वामी मन के, प्रभु ख्रीस्त मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ, मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से एस्तेर नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि एक सौंदर्य प्रतियोगिता रखी गई जिसमें एस्तेर विजेता हुई। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, हमारी विनती है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सीखते हैं एस्तेर की पुस्तक से हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे। हमारी प्रार्थना उन बहनों के लिए और भाइयों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। हमारी विनती है कि आप उन सबके साथ हो, उन्हें आशीष प्रदान करें, उन्हें शांति और आनंद दें, ताकि हर एक जीवन आप में बलवंत हो सके। इस समय हम सबके साथ हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि फारस के राजा को सुझाव दिया गया कि वह संपूर्ण देश की सुंदरियों में से अपने लिए एक नई रानी को चुन ले। अतः उसने सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया और एस्तेर ने भी उसमें भाग लिया। अब देखें कि उस प्रतियोगिता का क्या परिणाम निकला। क्या यह परमेश्वर की योजना थी? देखें एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद में यहाँ पर लिखा है, यों एस्तेर राजभवन में राजा शहर्स के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। ध्यान दीजिए, एस्तेर को देखने के बाद राजा को किसी और सुंदरी को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी या नहीं थी। राजा के लिए तो प्रतियोगिता समाप्त हो गई थी, उसे वस्ती के स्थान पर रानी मिल गई थी। एस्तेर रानी बना दी गई। वह रानी कैसे बनी? क्या यह एक संयोग या घटना थी? मैं नहीं सोचता। उसका चुना जाना ईश्वरीय विधान में था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर के लिए अवश्यंभावी था कि वह पहले से ही अपने लोगों की सुरक्षा का प्रबंध करे। उसने एस्तेर को रानी बनाकर यह काम किया। जी हाँ, यही कारण था कि हमें अन्य जाति राजा के राजमहल, भोज और आमोद प्रमोद का परिचय दिया गया है। परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य और शैतान के व्यवहार में उसकी प्रभुता को देखें। यह आज परमेश्वर की संतान के लिए यह एक महान सांत्वना है। लिखा है कि राजा एस्तेर से प्रेम करता था। मैं तो कहूंगा कि मैं इससे लेश मात्र भी प्रभावित नहीं हूं। यदि आप में से किसी ने रूत पर लिखी पुस्तक पढ़ी है तो उसमें रूत और बोआज की प्रेम कथा है, जो एक सर्वोत्तम प्रेम कहानी है। वह कलीसिया के लिए प्रभु यीशु के प्रेम का प्रतीक है। मैं यहाँ स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि शयर्स और एस्तेर की प्रेम कहानी में वह गुण नहीं है। यह एक वृद्ध निराश राजा है जो लगभग जीवन यात्रा पूरी कर चुका है। वह एक वृद्ध पुरुष था जिसने युवती से विवाह किया। वह अन्य जाति पुरुष विवाहित दंपति के मध्य परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं सकता था। मैं यहाँ कुछ भी नहीं देखता हूँ कि कहूँ कि यह कलीसिया और मसीह के प्रेम का रूप है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, और न ही इसमें प्रभावित होने वाली कोई बात है। परंतु यह घटना सर्वाधिक महत्वकारी है। इस युवती को अन्य जाति के सबसे बड़े राजा की रानी बनते देखना बड़ा ही रोमांचक है। अवश्यंभावी यहूदी विरोध यहूदियों का सफाया कर सकता था और इसराइल द्वारा परमेश्वर की उद्देश्य पूर्ति हताशा में बदल जाती। परंतु संकट के समय एस्तेर एक अद्वितीय स्थान में थी और यह सब परमेश्वर की ओर से ही था कि वह एक रानी बनती। एस्तेर 2 अध्याय के 18 पद में लिखा है, तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तेर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। आपको स्मरण होगा कि इस पुस्तक का आरंभ शयर्स द्वारा दिए गए एक विशाल भोज के वर्णन के साथ किया गया था। अब एक और भोज का उल्लेख किया जा रहा है। यह एस्तेर द्वारा आयोजित भोज है। राजा को वस्ती के स्थान पर एक अति सुंदर रानी मिल गई। इसलिए उसने एक वर्ष के लिए कर हटा दिए। यदि आज किसी देश में ऐसा हो जाए तो संसार हिल जाएगा। राजा का ऐसा अधिकार वास्तव में बड़ा रोचक है। काश हमारी राजधानी में ऐसी सौंदर्य प्रतियोगिता हो कि कर से कटौती हो जाए, तो सभी करदाता खुश हो जाएंगे। एस्तेर 2 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, जब कुमारियां दूसरी बार इकट्ठा की गई तब मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा था। अब मोर्दकै के पास एक नया स्थान है, पद नहीं, वह राजभवन के फाटक में बैठा था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक न्यायी था। प्राचीन युग में न्यायालय नगर द्वार पर ही होता था, शहर के चौक में नहीं, क्योंकि वही सबके आने जाने का मार्ग होता था। आपको स्मरण होगा कि बोअज विधियों का पालन करने नगर द्वार पर ही गया था। लूत के लिए भी लिखा है कि वह नगर द्वार पर बैठा था। इसका अर्थ यह हुआ कि सदोम की राजनीति में सक्रिय था और एक न्याय भी था। मेरे प्रियो, यह क्या एक रोचक बात नहीं कि एस्तेर के रानी बनते ही मोर्दकै न्यायी बन गया कि नगर द्वार पर बैठे। यह भाई भतीजावाद है। अब मैं यह तो नहीं जानता कि मोर्दकै अपनी योग्यता के कारण न्यायी बना था या एस्तेर ने उसे राजा से सिफारिश करके यह पद दिया था। मोर्दकै मेरे लिए पिता के समान है और वह अति योग्य भी है। मेरे विचार में आप उसे कोई अच्छा पद प्रदान करें तो बड़ी कृपा होगी। शायद इस प्रकार का सिफारिश एस्तेर ने राजा से की हो। राजा ने कहा होगा, ओह, हमारे पास अभी अभी पूर्वी द्वार पर एक स्थान खाली हुआ है, मैं उसे न्यायी बना देता हूं। यह एक अत्यधिक सांसारिक पुस्तक है और राजनीति में लेश मात्र भी अंतर नहीं आया है। आया है क्या? शायद नहीं। एस्तेर 2 अध्याय के 20 पद में लिखा है, एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए, और एस्तेर मोर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहां अपने पालन पोषण के समय मानती थी। यह स्त्री बड़ी विचित्र है। राजा की रानी बन जाने के बाद भी वह अपने पालनहार के निर्देश स्वीकार करती है। मेरे विचार में मोर्दकै एक विशिष्ट पुरुष था जिस पर हम धर्मशास्त्र अवलोकन में बहुत कम ध्यान देते हैं। स्पष्ट है कि उसमें असामान्य प्रतिभा थी। अब एक ऐसी घटना घटती है जो अप्रासंगिक है, परंतु इसी घटना पर संपूर्ण पुस्तक आधारित है। किसी ने कहा है, परमेश्वर बड़े द्वार छोटे चूल पर चलाता है। यहाँ फिर परमेश्वर का विधान प्रकट होता है। जी हाँ, वह पाशरों में क्रियाशील है। एस्तेर 2 अध्याय उसके 21 से 23 पद में लिखा हुआ है, उन्हीं दिनों में जब मोर्दकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे उनमें से विक्तान और तेरेश नामक दो जनों ने राजा शयर से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दकै को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई, और एस्तेर ने मोर्दकै का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। अब ध्यान दीजिए, यह एक रोचक घटना है। मोर्दकै नगर द्वार पर बैठा है, उसने आने जाने वालों की भीड़ में दो पुरुषों को बातें करते सुना। वे राजा के बारे में कुछ कह रहे थे। उसने कान लगाकर सुना, वे राजा की हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे। मोर्दकै ने तुरंत एस्तेर को इसकी सूचना दी। यह एक सामान्य दृश्य है कि कोई चोरी छिपे राजा की हत्या का षड्यंत्र रचे। उस युग में यह एक आम बात थी कि राजा के सिंहासन के लिए लालसा रखी जाए और राजा को घात किया जाए। मोर्दकै की इस नई नियुक्ति के कारण वह ऐसे स्थान पर था जहां वह षड्यंत्र सुनने योग्य था। मोर्दकै से सूचना पाकर एस्तेर ने राजा को इसकी जानकारी दी। आपको स्मरण होगा कि मैंने मोर्दकै की सिफारिश की थी। वह अपना काम निष्ठापूर्वक कर रहा है। उसने आपकी हत्या के षड्यंत्र का पता लगाया है। राजा ने छानबीन की और मोर्दकै की बात सच निकली। अपराधी बंदी बनाए गए, उस समय लंबे अभियोग चलाकर जनता का पैसा फूंका नहीं जाता था, उन्हें तुरंत मृत्यु दंड दिया गया, उन्हें फांसी दी गई। इसका उद्देश्य था कि देखने वाले राजा के विरोध कुछ भी करने का साहस न करें। यद्यपि उस युग के मनुष्य असभ्य माने जाते थे, वे नियमाविरोधी या गतिविधि या अपराधियों को शरण देने का साहस नहीं करते थे। वह घटना भी फारस के इतिहास में लिख दी गई। बड़ी विचित्र बात है कि यहाँ एक बात भुला दी गई थी, मुर्दकै को उसकी वफादारी का प्रतिफल नहीं मिला। मेरे विचार में वह कई बार सोचता होगा कि उसे अनदेखा क्यों किया गया। उसे राजा की जान बचाने के लिए तो बिल्ला भी नहीं दिया गया है, निश्चय ही वह इसका हकदार तो था ही। ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर की प्रभुता के कारण। अपने विधान में परमेश्वर नियंत्रण कर रहा था। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 3 से अध्ययन जारी रखेंगे। विषय है हमान और यहूदी विरोध। यहूदियों के इतिहास में यह बार बार होने वाली घटना थी। इस अध्याय में आप हमान के स्थान पर फिरौन भी लिख सकते हैं या हिटलर का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखने योग्य अनेक नाम हैं। इसराइल के मिस्र प्रवास से आज तक कहीं न कहीं उन्हें मिटा डालने की घटना इतिहास में है। एस्तेर की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इन बातों के बाद राजा शेयर्स ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन ठहराया। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा परिचय हामान नामक एक मनुष्य से करवाया जा रहा है। यह व्यक्ति यहूदी विरोध के अभियान में लंबी सूची में एक है। राजा ने उसे ऐसा पद प्रदान किया था जो प्रधानमंत्री के तुल्य है। वह एक अगागी पुरुष था। पहला सामुएल की पुस्तक 15 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि अगाग अमालेकियों का राजा था। शाऊल यदि परमेश्वर की आज्ञा मानकर अगागियों का सर्वनाश कर देता तो आज यहूदियों पर यह संकट नहीं आता, क्योंकि वे विलोप हो जाते। परमेश्वर इतिहास को देखता है और जानता है कि भविष्य क्या है। अगाग वंशियों का विनाश न करने की शाऊल की चूक आज उसकी जाति के विनाश पर उतर आई है। परंतु परमेश्वर पाशरों में क्रियाशील है। वह अपने लोगों की रक्षा कर रहा है। इसराइल के विरोध एक भी युक्ति सफल नहीं होगी। लगभग सब ही का विचार था कि हिटलर संसार पर राज करेगा। मेरे विचार में हिटलर को रोकने वाले मनुष्य नहीं परमेश्वर था। यहां भी परमेश्वर हामान को रोकेगा। अब हम देखेंगे कि एस्तेर को सिंहासन पर लाने वाला परमेश्वर ही था। यदि वह वहां नहीं होता तो यहूदी विरोधी हामान यहूदियों का सर्वनाश कर देता। यह उसका दृढ़ संकल्प था। आइए पढ़ें एस्तेर 3 अध्याय उसके 2 पद में, राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दकै ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। राजा ने घोषणा की कि हामान उसका प्रधानमंत्री है और सब उसे दंडवत करेंगे। मोर्दकै के बारे में तो हम देख चुके हैं कि वह नगर द्वार पर न्यायी था। इसका अर्थ है कि वह राज्य के अधिकारियों में से एक था। उसे भी हामान को दंडवत करना था, परंतु लिखा है कि उसने हामान को दंडवत नहीं किया। मैं उसे सलाम करना चाहता हूं कि उसने हामान को दंडवत नहीं किया। मेरे मित्रों, अब मैं मोर्दकै के बारे में अपने विचार बदल रहा हूं। हामान को देखकर सब उसे दंडवत करते थे, परंतु मोर्दकै नहीं करता था। मैं यहां पहली बार मोर्दकै के जीवन में परमेश्वर का हाथ देखता हूं। आप सोचेंगे वह तो परमेश्वर की इच्छा में नहीं था, फिर परमेश्वर का हाथ उस पर क्यों था? उसे अपने देश लौट जाना चाहिए था। जी हाँ, परंतु स्वदेश न लौटने के कारण उसके अपने ही कारण थे। निसंदेह उसका उचित स्थान इसराइल देश ही था। यह सच है कि वह परमेश्वर की इच्छा में नहीं था, परंतु वह परमेश्वर का मान रखता था, जबकि संपूर्ण पुस्तक में वह परमेश्वर का नाम नहीं लेता है। आप जानते हैं मैंने यह निष्कर्ष कैसे निकाला? परमेश्वर की आज्ञा अटल थी कि यहूदी परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत न करें, चाहे वह मूरत हो या मनुष्य या पशु। अतः हमान पदोन्नति पाकर बाहर निकलता है तो सब राजकीय कर्मचारी उसे दंडवत करते हैं, केवल एक मनुष्य मोर्दकै को छोड़ करके जो उसे दंडवत नहीं करता है। मेरा विश्वास करें, जब वह अकेला खड़ा रह जाता तो स्पष्ट दिखाई देता था। मोर्दकै और एस्तेर स्वदेश लौटने को निष्ठावान नहीं थे, परंतु वे अपने लोगों को बचाने में अपना जीवन संकट में डालने के लिए तैयार थे। अतः मैंने मोर्दकै के लिए जो बुरा कहा उसकी अब क्षमा मांगता हूं। एस्तेर 3:3-4 में लिखा हुआ है, तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्दकै से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उसे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक ना मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्दकै की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया कि मैं यहूदी हूं। जब उससे पूछा गया कि उसने हामान को दंडवत क्यों नहीं किया, उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि वह एक यहूदी है, परंतु अब वह स्पष्ट कहता है कि वह यहूदी है। आपको स्मरण होगा कि जब एस्तेर सौंदर्य प्रतियोगिता में उतर रही थी, तब उसने उसे चिताया था कि वह किसी से न कहे कि वह यहूदी है। उसका पति भी नहीं जानता था कि वह एक यहूदी स्त्री है। मोर्दकै उससे कहता है, मैं तुझे दंडवत नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक यहूदी हूं। इसका अर्थ था कि वह अपना धर्म भी प्रकट कर रहा है। वह केवल एकमात्र सच्चे एवं जीवित परमेश्वर को दंडवत कर सकता था। वह किसी भी मूरत सूरत या मनुष्य को दंडवत नहीं कर सकता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6:4 में विहित आज्ञा उसे दिखाई और सिखाई गई थी। हे इसराइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। उस संपूर्ण संसार को मूर्ति पूजक प्राचीन संसार को बताना था कि परमेश्वर एक है। आज के नास्तिक संसार में हमें बताना है कि परमेश्वर त्रिएक है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। मोर्दकै ने अपना स्थान न छोड़ा और सब ने जान लिया। क्यों? उस युग में संपूर्ण संसार में जाना जाता था कि यहूदी एकमात्र सच्चे परमेश्वर के उपासक थे। मैं मोर्दकै को साबास कहना चाहता हूं। मैंने उसके बारे में पहले जो कुछ भी कहा उसके लिए फिर से क्षमा मांगता हूं। अब वह परमेश्वर के लिए खड़ा होना आरंभ करता है, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसका यह व्यवहार उसकी संपूर्ण जाति को संकट में डाल देगा। वह तो केवल इतना ही सोच रहा था कि उसकी नौकरी चली जाएगी या उसकी जान जाएगी, लेकिन कुछ और होने वाला था। एस्तेर 3:5-6 में आगे हम पढ़ते हैं, जब हामान ने देखा कि मोर्दकै नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तो उसने केवल मोर्दकै पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने शयर्स के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकै की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। हामान ने दिखा दिया कि वह नीच प्रवृत्ति का मनुष्य था। वह मोर्दकै के व्यवहार को अनदेखा कर सकता था। इधर मोर्दकै परमेश्वर के लिए खड़ा होना आरंभ कर रहा है, तो उधर हामान अपनी संपूर्ण दृष्टता में शैतान के लिए खड़ा हो रहा है। सबसे पहले हम उसका ओछापन देखते हैं। संपूर्ण कहानी में हामान का घृष्ट चरित्र प्रकट होगा। आगे चलकर के आप देखेंगे कि वह अपनी पत्नी के कंधों पर सिर रखकर रो रहा है। वह कुछ ऐसा कहेगा, संसार में मैं जो चाहता हूं मुझे मिल सकता है, इस राज्य में मैं जो चाहूं प्राप्त कर सकता हूं, परंतु वह अंकिंचन यहूदी मुझे दंडवत नहीं करता है। वह एक छोटा सा मनुष्य है, उसकी कौन चिंता करेगा, परंतु वह उसी से इतना अधिक परेशान है। मेरे मित्रों, अब हमान एक भयानक योजना बनाता है। वह शेर्स के राज्य में सब यहूदियों का सर्वनाश करना चाहता है। उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा का ज्ञान नहीं था जो अब्राहम को दी गई थी। यहूदियों को आशीर्वाद देने वालों को वह आशीष देगा और उन्हें श्राप देने वालों को वह श्राप देगा। परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को पूरी करता है। इतिहास में आप देख सकते हैं कि यहूदियों ने अपने सताने वालों को जनाजा ही उठाते देखा है। हिटलर ने उनका सर्वनाश करना चाहा था, परंतु वे तो अब भी हैं। हिटलर और उसके अनुयायी ही समाप्त हो गए। जी हाँ, परमेश्वर ने अपनी प्रजा की रक्षा का उत्तरदायित्व उठा रखा है। यह सत्य है कि उनका सर्वनाश नहीं हुआ, एक चमत्कार ही है। निश्चय ही परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा है, और एस्तेर की पुस्तक में भी हम इसी बात को देखेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एस्तेर की पुस्तक में भी ऐसे ही कुछ अद्भुत कार्य करने जा रहा है। वह यहूदियों को बचाएगा। लेकिन आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, इसलिए अब हम अगले अध्ययन में देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने कार्य को करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके निकटता में रहते हैं, निश्चय ही वह अपनी प्रतिज्ञाओं को मुझ में और आप में पूर्ण करता है। आप किसी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, वह आपकी रक्षा करेगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, गया मुझे।